एक अप्रैल अपना मूल्यांकन करना सीखें। जनाचार्य श्री ज्ञानचंद जी म सा तारांकन वीतराग प्रभु महावीर ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सभी के हित एवं सुख के लिए देशना प्रदान की थी। उनके देशना में अतीत अनागत वर्तमान की उपयोगिता जुड़ी हुई है। उत्तराध्यायन सूत्र में प्रभु ने फरमाया, निसंते सिया महुरी बुधन अंत्य सिया अर्थ जुतानी सिखिज्जा निर्थानी उवज्जय। बुद्ध गुरुजनों के निकट सदा प्रशांत रहे, उनसे अर्थयुक्त पदों को सीखे और निरर्थक बातों को छोड़ दें। गुरुजनों के पास विनय से रहने से अनेक उपलब्धियां सहज प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ प्रकृति से शांत होना भी जरूरी है। साधक को चाहिए कि वो अपने ध्यान में रहे, इंद्रियों को बाहरी विषयों में लगाकर उसका दुरुपयोग ना करें। प्रसन्न वो है जो अपना मूल्यांकन करते हैं, परेशान वो है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। अपना मूल्यांकन से तात्पर्य हम जिस भी रूप में हैं उस रूप में सुख से रहना सीख जाएं। परेशानी यह नहीं है कि गाड़ी दुकान मकान नहीं है, परेशानी यह है कि पड़ोसी के पास भाई के पास यह सब क्यों है। भगवान ने इंसान को सुखी बनाने के लिए देशना दी, आचरण की विधि बताई। जिन वाणी का आचरण आपकी सोच को सही और आपको सुखी बना देगा। पशु सड़क पर भी आराम से नींद लेते हैं और आप पंखे कूलर AC गद्दे में सोकर भी आराम में नहीं है, बेचैन है। यह समझ का फर्क है। जहाँ हो जिस जगह हो वहाँ रहना सीख जाए तो सुखी रहोगे। ये आरा दुश्मा है, इस आरे में कोई न कोई दुख हर किसी के साथ जुड़ा है। लेकिन इतना दुखमी भी नहीं है कि हमें जिनवाणी पढ़ने एवं सुनने को ना मिले। दुखमा से तो बहुत ठीक है। इस जीवन में ऐसा प्रयास करें कि हमें छठे में और अगले कालचक्र के पहले आरे में जाना ना पड़े, क्योंकि दोनों आरों की कंडीशन एक समान है। हम अगर सात कुव्यसनों के त्यागपूर्वक सम्यक दृष्टि के भाव के साथ श्रावक के 12 व्रतों में एक भी पालते हैं तो भी श्रावक हैं। तम्मप्यही ग्रंथ में यह बात आई है कि एक व्रतधारी भी श्रावक है, 12 व्रतधारी भी श्रावक है। यह बात अलग है कि 33% पास होने वाला भी पास है और 99% वाला भी पास है। बस कंडीशन में भारी फर्क है। क्लास एक ही है लेकिन स्कूल में प्रवेश पाने के लिए जैसे ड्रेस मोजे जूते टाई किताबें आदि एक समान होना अनिवार्य है, अन्यथा स्कूल में प्रवेश निषेध है। इसी प्रकार सात कुव्यसन का त्याग और सम्यक दृष्टि होना व्रत अंगीकार करने से पहले जरूरी है। जिस प्रकार शादी के समय हथलेवा के साथ सात फेरे लेने के बाद वह व्यक्ति भले जिंदगी भर अपनी पत्नी से न मिले तो भी विवाहित कहलाता है, इसी तरह से जो व्यक्ति सम्यक विधि के साथ एक व्रत भी करता है तो श्रावक है। श्रावक व्रतों में जीने वाला छठे आरे में नहीं जा सकता। कितना ही ऊंचा श्रावक हो लेकिन सात कुव्यसनों में एक भी कुव्यसन है तो संकित की भी भजना है। अट्ठाई तक भले कर ले पर अंडा खाता हो तो उसका तब बेकार है। हम किसी शहर में पहुंचे तो वहां के लोग दर्शन करने आए। उन्होंने कहा, महाराज साहब यहां का अमुक जैन है, वह दुकान पर अंडे बेचता है। फिर दूसरा व्यक्ति आया, वो भी यही कहता है। सोचने वाली बात है कि आपकी समाज में अच्छे व्यक्ति भी तो बहुत है। तपस्वी दानी शीलवान सदाचारी, उनकी अच्छायां आप जल्दी से नहीं बताओगे लेकिन किसी की बुराइयां जरूर पहले बताओगे। प्रभु इसीलिए कहते हैं कि दूसरों में नहीं अपने में झांको। भगवान महावीर ने स्थविर कल्पी साधु को इस दुनिया के बीच रहकर साधना करने के लिए कहा है। जहां वैभव बिखरा पड़ा है, बड़े सेठ साहूकार संपन्न श्रावक श्राविकाएं लड़के लड़कियां खान पान रहन सहन यानी भोग विलास के वातावरण के बीच रहकर भी अपने में जीना है। गृहस्थी का असर अपने पर ना हो परंतु अपना प्रभाव उन पर हो। लोग हमारी जिंदगी निरस मानते हैं जबकि हमारी जिंदगी निरस न होकर सरस है। वर्षों पूर्व जब नरेश जी खीवसरा की पुत्री पूजा जब बच्ची थी तब कहती रहती थी कि आपका जीवन बहुत निरस है, दोनों टाइम प्रतिक्रमण दोनों टाइम प्रतिलेखना स्वाध्याय एक ही धर्रा है। हमने उसे समझाया, बात सुन, ऐसा नहीं है। तुम देख लो तुम्हारे जन्म से ही वही माँ बाप है जबकि हमारे तो माँ बाप ही नए नए आते हैं। तुम्हारे वही बंगला वही दोस्त घूमने की वही 10-20 होटल हैं जबकि हम तो गांव नगर घूम लिए। हर दिन हजारों भाई बहन नए मिलते हैं, खाना भी नित नया मिलता है। तो निरस जिंदगी तुम्हारी या हमारी? हमारी जिंदगी तो संयम से सरस है। हमें संयम क्रिया पालने में आनंद आता है जबकि तुम अपना देखो। वर्षों पुरानी घटना है, तब यात्रा के साधनों की इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लोग पैदल यात्रा करते थे। उस समय तख्तगढ़ नाम का एक नगर था, उसमें कई अमीर गरीब लोग रहते थे। उस नगर में एक सेठ जी ने सोचा, पूरी जिंदगी काम धंधे में ही बीत गई, अब कुछ पुण्य का काम करूं, तीर्थयात्रा पर जाकर कुछ पुण्य का उपार्जन करूं। इस हेतु वह अपनी पत्नी के साथ पैदल ही यात्रा पर चल पड़ा। कई जगह जैसे पालिताना, शत्रुंजय पर्वत आदि कई जगह की तीर्थ यात्रा की। जब दोनों यात्रा कर लौट रहे थे, तभी उनको रास्ते में एक संयमी साधु वर मिले। सेठ ने साधु भगवंत को वंदन कर तीर्थ दर्शन से प्राप्त हुए आनंद की बात कही। साधु महाराज ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपको यात्रा करने से इतना आनंद मिला है तो उसकी स्मृति के रूप में कोई व्रत नियम ले जाओ। यात्रा की मीठी स्मृति के रूप में किसी सद्गुण से अपना जीवन भर दो। तीर्थयात्रा तभी सफल होती है जब हमारे विचार निर्मल हो, भावना पवित्र हो, मन विषय कषाय से दूर हो। सेठ जी को साधु की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुनिराज से कहा, आप मुझे नियम दिला दीजिए कि चाहे जितनी कठिन परिस्थिति संयोग आए तो भी मैं क्रोध न करूं, क्योंकि क्रोध ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। क्रोध के दुष्ट परिणाम मैं देख चुका हूं, इसलिए प्रभु यात्रा की सफलता की स्मृति के रूप में मैं क्रोध को तिलांजलि दूंगा। इस पर मुनिराज ने कहा, देखो सेठ जी, लिया हुआ नियम बहुत अच्छी तरह से पालना होगा। प्रतिज्ञा सिंह की तरह ले रहे हो तो इसका सिंह की तरह ही पालन करना। इस पर सेठ ने वचन दिया, गुरुदेव, प्राणों के मोल पर भी इस नियम को मैं नहीं तोड़ूंगा। और मुनिराज ने सेठ को क्रोध न करने का नियम दे दिया। यात्रा पूरी संपन्न कर सेठ अपने गांव लौट आया। यात्रा अच्छी तरह से समाप्त होने के आनंद को व्यक्त करने के लिए उस काल में यात्रा करने वाला पुण्यवान सारे गांव को भोजन कराता था। जब सेठ के भतीजे को पता चला कि चाचा जी यात्रा कर लौटे हैं और साथ में क्रोध न करने का नियम लेकर आए हैं, तो उसने अपने चाचा की परीक्षा करने का निर्णय किया। उसे पता था कि चाचा जी यानी साक्षात क्रोध के अवतार, वे कभी क्रोध किए बिना रह सकेंगे। उसने अपने चाचा का सच्चा स्वरूप गांव के लोगों के सामने खुला करने का मन ही मन संकल्प किया। भतीजे ने सारे गांव वालों को अपने चाचा जी सफल यात्रा के निमित्त भोजन का आमंत्रण दिया, लेकिन जानबूझकर उसने अपने चाचा जी का ही घर टाल दिया। उसने उनके घर आमंत्रण नहीं दिया। शाम को गांव के सब लोग जब भोजन के लिए जाने लगे, तब सेठ जी थाली कटोरी लेकर भोजन के लिए निकल पड़े। इस पर सेठानी गरज उठी, बिना आमंत्रण के भोजन करने जाते हो, ऐसा लगता है कि अकाल के दिनों के भूखे हो। सेठ ने तो किसी भी स्थिति में क्रोध न करने का नियम लिया था, इसलिए उन्होंने पत्नी से कहा, अरे भगवान, तू तो कुछ समझती ही नहीं है ना, हम क्या पराये हैं, हमें अपने ही घर कैसा आमंत्रण, हमारी यात्रा के निमित्त तो यह प्रीति भोज है। चल उठ, खड़ी हो जा। और सेठानी घसीटते पांवों से सेठ के साथ भोजन करने निकली। सेठ का भतीजा मुख्य दरवाजे पर सबका स्वागत करने बैठा था, लेकिन जैसे ही सेठ आए, वह मुंह फेरकर अंदर चला गया। सेठानी यह देखकर सुलग उठी, देखा, बिना आमंत्रण के भोजन करने आए तो ऐसा घोर अपमान सहन करने की बारी आई। सबका स्वागत करने वाला आपका भतीजा हमें आओ भी नहीं कहा। आपको भोजन करना हो तो आप कीजिए, मैं तो चली। सेठ ने कहा, अरे भगवान, तू भी कैसी अकल की पुतली है, अकेला मनुष्य कितने लोगों का ध्यान रखेगा, कोई विशेष काम आया अकेला है इसलिए अंदर चला गया होगा। यह तो हमारे बेटे के समान है, हमें उसका बर्ताव मन पर नहीं लेना चाहिए। थोड़ी ही दूरी पर चाचा जी की बातें छिपकर सुनने वाला भतीजा मन ही मन हृदय से नतमस्तक हो गया। फिर भी उसने और एक परीक्षा करने का निश्चय किया। जब चाचा जी भोजन करने बैठे, तब उसने उनकी थाली में लड्डुओं के बदले दो बड़े पत्थर परोस दिए। यह दृश्य देखकर सेठ के दोनों ओर बैठे लोग हंस पड़े। सेठानी यह दृश्य देखकर आग बबूला हो गई, लेकिन सेठ ने तुरंत बात निपट लेने के लिए, बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, मेरी थाली में लड्डू नहीं बल्कि पत्थर ही शोभा देते हैं, क्योंकि मैं घर का बड़ा होते हुए भी सबसे पहले भोजन करने बैठा, मैंने यह उचित नहीं किया, मुझे तो सबके बाद अंत में भोजन करना चाहिए था। बेटा, तूने मेरी थाली में पत्थर परोसकर मुझे सतर्क किया, तेरा बहुत बड़ा उपकार है। सेठ की बातें सुनकर भतीजे की आंखों में आंसू छलक पड़े। अपने चाचा जी के पांवों पर गिरकर उसने कहा, चाचा जी, आपने सचमुच भगवान की यात्रा की है, आपकी यात्रा सचमुच सफल हो गई, आपकी तीर्थयात्रा अवश्य आपकी भवयात्रा संसार परिभ्रमण को छोटा करने वाली सिद्ध होगी। चाचा जी, आप सचमुच क्रोध त्याग कर क्षमा की सजीव ज्योति बन गए हैं, पार्समनी जैसे परमात्मा की संगति से लोहे जैसे थे आप, अब सचमुच सोना बन गए हैं। मैंने आपको जिस प्रकार से परेशान किया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। वहां उपस्थित लोगों ने जब सेठ की अद्भुत क्षमाशीलता तथा क्रोध त्याग की कहानी सुनी तो उनकी आंखों में हर्ष के आंसू छलक उठे। फिर सभी ने सेठ जी की खूब प्रशंसा की। करो यात्रा हजार, नहीं बदले विचार तो जीवन है बेकार। ध्यान दीजिए, सेठ ने स्थावर तीर्थ के दर्शन किए जबकि परिवर्तन आया जंगम तीर्थ से। पाप 24 घंटे चलता है जबकि पुण्य बोध कुवर्त करना पड़ता है। जैसे पत्नी, परिवार धन पर आपका 24 घंटे मोह है, आसक्ति है तो क्रिया व कर्म बंद हो रहा है, जबकि पुण्य या निर्जरा तो करने से होगी। आपके यहाँ के नररत्न जयपाल जी की बड़ी भावना थी, यहाँ तक कि वो महाराज बनने को भी तैयार थे। वर्षों से हमारे यहाँ आते रहे। कोरोना काल में भी एक रविवार का जाप सेक्टर 11 में कराने की प्रबल भावना थी, पर लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया। इसी बीच सभी ने खड़े होकर रविवार की विनंती की। इधर विदुषी साध्वी रत्ना जागृति जी, शुभा जी, निर्जरा जी का भी भव्य चातुर्मास आपके यहाँ हो रखा है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रविवार का प्रवचन यही रखे जाने की भावना रखते हैं। सुनते ही सभी में हर्ष हर्ष छा गया। जयपाल जी दुनिया में नहीं रहे, जिंदगी क्षणिक है, इसे समझे और अमरता की राही बने। महात्मा जी महाराज साहब 84 वर्ष की उम्र में भी चलते हैं। इनके सब भाई चले गए, यह एक बचे हैं, क्योंकि यह लकीर पर नहीं रहे। इस संसार की लकीर से हटकर मुक्ति की लकीर पर आ गए तो बच गए। जैसे कि सर्पिनी का जन्मता बच्चा वही बचता है जो लकीर से हटकर जाता है। आज नीलिमा जी का स्वागत करते हो, हाथ जोड़ देते हो, यह स्वागत का सही तरीका नहीं। हाथ जोड़ने के साथ मन में कुछ न कुछ नियम लो, तभी स्वागत है। यह नीलिमा जी का स्वागत नहीं बल्कि संयम का स्वागत है, भगवान के शासन का स्वागत है। इसी तरह धर्म पथ पर बढ़ते जाए। धर्म प्रभावना, अपना मूल्यांकन कैसे करें, इस विषय पर प्रवचन हुआ। काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। संघ मंत्री श्री राजेंद्र जी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि गुरुदेव तरण तारण की जहाज है, भव सागर से पार लगाने वाले हैं। जहाँ कहीं भी आपके चरण पर जाते हैं वह धरती पावन हो जाती है। आप श्री अधिक से अधिक समय विराज कर हमें लाभान्वित करें। आज ब्यावर से महिला रत्न श्रीमती सुशीला देवी जी मेहता सपरिवार उपस्थित हुए। इसी तरह कल जलंधर से नररत्न श्री संजीव जी जैन दंपत्ति उपस्थित हुए। मुंबई से नररत्न श्री भावर जी खीवसरा दंपत्ति आदि उपस्थित हुए। परम उपकारी संघ शास्ता श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की जन्म शताब्दी पर उनके जीवन के आदर्श को सामने रखते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। तीर्थंकर महावीर स्वामी के जीवन को अवश्य पढ़ें। दिनांक 2 अप्रैल रविवार को प्रातः 8:30 से जाप एवं उसके बाद आचार्य प्रवर का प्रवचन होना है। आप सभी सपरिवार इष्ट मित्रों के साथ अवश्य लाभ लेवें। प्रवचन पश्चात गौतम प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हो।